الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذکر اللہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے دل میں استحضار کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے دل میں جمنے کا اور نفس اور شیطان کے مقابلے میں قوت اور طاقت کے ارادوں میں، دل میں، ہمتوں میں آنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اس کا اہتمام ہو. شکلیں ذکر اللہ کی کیا ہیں وہ بھی بتلائی. ان میں ایک تو مسنون اذکار بڑے اہمیت رکھتے ہیں. ہم اہل علم جو ہیں مولوی، اس کو مستحب سمجھ کر، اس کو نعوذ باللہ درخور اعتنا نہیں سمجھ کر اس کا اہتمام نہیں کرتے. اکانی کے یہاں اس کا بڑا اہتمام رہا. ہر چیز میں جو مسنون اذکار ہوا کرتے تھے ان کا وہ حضرات بہت زیادہ اہتمام. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اعتکاف کے زمینے میں سنا ہوگا کہ جہاں اعتکاف کی قسمیں بیان کی ہیں، سنت اعتکاف، اس نفل اعتکاف بھی، کہ جب بھی آدمی جاوے آدمی نیت کر لے نا وہی تو سنت اعتکاف، جہاں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، وہاں ساتھ میں یہ بھی نوئی تو سنت اعتکاف. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اعتکاف وہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ والد بزرگوار حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی، مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ وہ ہمیشہ کبھی کبھار زور سے بھی بول دیا کرتے تھے تاکہ ساتھ میں رہنے والوں کی تربیت ہو. یہ جو مجھے بتلانا ہے وہ یہ کہ ہمارے اقارب کے یہاں इन मसनून अज़कार का बहुत ज्यादा इहतमाम रहा। और जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूँ कि मसनून अज़कार मुख्तलिफ किस्म के हैं, ज़मानों में जो तब्दीली आती है, रात गई दिन आया, दिन गया रात आई, तो उसके अंदर भी अज़कार है। एक जगह से दूसरी जगह आदमी जब मुंतकिल होता है, घर से बाहर बाजार में, घर घर के अंदर आया मस्जिद में, मस्जिद से बाहर बैतुल खला में, बैतुल खला से बाहर, तो उस वक्त के लिए तजवीज़ किए गए। अफ़आल और आमाल में जब तब्दीली होती है, आदमी खाना खाता है, खाना शुरू करता है तो बस ख़त्म करता है तो, इसी तरह सोना शुरू करता है तो सोना ख़त्म करता है तो, वजू शुरू करता है वजू के दौरान, तो मतलब यह है कि अवकात ज़मान है। इसी तरीके से आमाल और इसी तरीके से अमकना जदू, इन तीनों मौके पर जब किसी न किसी किस्म की तब्दीली आने पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अज़कार तस्लीम फरमाए और तमाम अकाबिर के यहाँ इसका बड़ा अहतमाम रहा। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातहू फरमाते हैं, ये हज़रत डॉक्टर अब्दुल हैद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये मसनून अज़कार जो है गोया आदमी इसके जरिए से अपने कल्ब का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कायम कर लेता है। ये तो एक बटन है, जैसे आपके घर में बिजली का बटन है, बिजली की लाइन आई हुई, हालांकि बिजली का पावर हाउस जहाँ बिजली बलती है सैकड़ों मील दूर है, दरमियान में कितने खंभे, कितने तार, कितने ट्रांसफार्मर और पता नहीं क्या किन किन वास्तों से वो बिजली आपके घर तक पहुंची है, लेकिन जहाँ आपने बटन ऑन किया वो सैकड़ों और हजारों मील का सफर तय करके उसी वक्त वो आपके घर को रोशन कर देती है। इसी तरीके से बंदा जब इन मसनून अज़कार का इस्तेमाल करता है तो उसके नतीजे में उसके कल्ब का ताल्लुक अल्लाह ताला की बात के साथ कायम हो जाता है। इसलिए उस वक्त मान का भी इस्तेमाल रहना चाहिए कि वहाँ उन दुआओं के अंदर मान कैसी कैसी अजीब गरीब दुआएं कर, उस तफसील में अभी नहीं जाना है, लेकिन बहरहाल उन दुआओं के मानी को जब देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ये इल्हामी दुआएं हैं। अल्लाह तबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक के ऊपर उनका इल्हाम फरमाया और आपने उम्मत को ये सिखाई है। ऐसी अजीब गरीब नेमत है कि हम और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी ये मासूरा करेंगे, आपसे तय कर लो, आज से तय कर लो कि आप जितनी दुआएं हमें याद हैं उन पर तो अमल आज से ही शुरू करना है। मैं हमेशा मजलिसों में कहा करता हूँ कि भाई छोटे वक्त की बहुत सारी दुआएं हैं, एक छोटी सी दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका उन्तो वाहिया, और जो हर हर छोटे छोटे बच्चे को भी दो साल तीन साल का बच्चा जो बोलना शुरू करता है उसकी माँ दुआओं में ये दुआ बहुत आसान है सिखला देती है और बच्चा हर बच्चा जानता है। लेकिन मैं सबसे पूछूंगा आज रात जब सोए थे तो कितनों ने पढ़ी थी, अपने दिल से जवाब ले लो, याद सब तो है लेकिन कितनों ने एहतमाम किया। बैतुल खला जाने की दुआ उसका तरीका सबको मालूम है कि भाई जाने से पहले दुआ बिस्मिल्लाह है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अल-खुबुथ वल-ख़बाइथ, फिर उल्टा पाँव दाखिल किया जाए, फिर सीधा फारिग हो जाए तो निकलने के वक्त पहले सीधा पाँव निकालें, फिर उल्टा निकालने बाहर आकर गुफरान कर अल्हम्दुलिल्लाह। ये तरीका वहाँ जितने भी मौजूद है मैं समझता हूँ शायद ही कोई कहता हो, अभी कोई आदमी कोई ऐसा नहीं जिसको ये मालूम हो, लेकिन मैं पूछूंगा अभी आप उठे 9 बजे 10 बजे और जब गए थे तो कितनों ने इसका एहतमाम किया, गए भागे दौड़े जाके दरवाजा खोला बैतुल खला का और घुस गए, कौन सा पाँव पहले कौन सा पाँव बाद में यही याद नहीं आया, दुआ तो कौन पढ़ता है। ये हमने जो मिजाज बनाया अपने इस मिजाज को बदलने की जरूरत है। आज इस मजलिस में जब यहाँ आए और रहे हैं और इस मौजू पर बात सुन रहे हैं तो पहला अज़्म ये कर लीजिए, तय कर लीजिए, अल्लाह ताला से आज़्म पैमान कर लीजिए कि जितनी सुन्नतें मसनू अस्कार दुआएं याद हैं आज से ही उस पर अमल शुरू करेंगे करेंगे और जो याद नहीं है जो मालूम नहीं है उनको सीखने का इस्तेमाल करके उसको भी उनको भी अपनी जिंदगियों में गोया अमली जामा पहना ये बहुत बड़ी चीज है। नकल कर चुका हूँ अगर शाह फजल रहमान साहब बिन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का मकूला जो सिलसिले जय नक्शबंदिया के बड़े अकाबिर में से हमारे अकाबिर में से हैं तो भाई जब ये कोई आदमी कोई अमल करते वक्त ये पढ़ता है और इस्तेजार के साथ ये इस्तेजार भी होना चाहिए बैतुल खला जाए तो दिल में ये ख्याल हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते थे तो ये दुआ पढ़ते थे मैं भी इसीलिए पढ़ता हूँ बैतुल खला जाते थे तो आप पहले अपना दाया बाया पांव अंदर रखते थे मैं भी इसीलिए रखता हूँ ये जहन में हो आपकी नकल उतार रहा ये जो हो रहा है ऐसे ही कोई इत्तेफाकी अमल नहीं है बल्कि मैं तो हुजूर का एक उम्मती होने की हैसियत से और अल्लाह ताला ने क्योंकि हुक्म दिया है कुरान पाक में कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउनी उसी इत्तेबा पैरवी की गरज से वह हर काम ये अगर आप कर लेंगे तो हजरत शाह फजल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चंद दिनों में अगर साहिब नस्बत न हो जाओ यानी अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम न हो जाए तो मुझे कहो तो बहरहाल ये तो अस्कार मसनूआ हमारे अकाबिर के यहाँ तो इसका बड़ा एहतमाम रहा और उसके अलावा जो दुआएं तो हम लोग जैसे हिजबुल आजम पढ़ते हैं मैंने अपने हजरत से देखा उनको पूरी हिजबुल आजम अजमर याद थी कभी वो किताब खोलते नहीं पढ़ते थे रोजाना का जो माहौल होता था वो अदर जबानी पढ़ लेते थे वो तो कई मतलब अंदाजा हुआ मुझे तो महाराज ये जो है हाँ हमारे आपके लिए तो सुन के भी सोचना मुश्किल है कभी ऐसा भी हम कर पाएंगे या नहीं पाएंगे ये अस्कार मसनूआ के अलावा भी दुआओं का चलते फिरते एहतमाम दिल में तसव्वुर हो अल्लाह ताला से मांगने का यही नहीं कि भाई जो है रुजू किया जो रखा कोई हाथ उठाए दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हर वक्त आदमी की कोई ना कोई जरूरत होती है आप सफर के लिए जब निकलेंगे घर से तो पता नहीं दिन में कैसे कितने कितने अंदेशे होते हैं अब मैं जा रहा हूँ बस मिलेगी नहीं रक्षा मिलेगा या नहीं कोई सवारी मिलेगी या नहीं और निकलते वक्त जहाँ सफर की दुआएं करके निकले दिल ही दिल में ये भी दुआ कर ले अल्लाह आपके के साथ सवारी का इंतजाम हो जाए और सवारी जहाँ मिली अल्लाह तेरा शुक्र है फिर हम लोग अपनी हाजतों के लिए दुआएं तो जहाँ बहुत मुसीबतें जब होती हैं तो उसमें पुत्र मान लेता है लेकिन उस चीज के हासिल होने पर अल्लाह का जो शुक्र अदा करना चाहिए उधर ध्यान रहता सवारी की दिल में तमन्ना थी ख्वाहिश की दुआ भी की थी लेकिन जब सवारी मिल गई तो कभी भूले से जबान पर ये नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्म लक अल्हम्द अल्लाह तेरा शुक्र एहसान कि तूने वक्त पर सवारी अता ये भी हो बस तो मिल गई लेकिन अंदर बैठने की जगह नहीं बस में चढ़ने का मौका तो मिल गया ऐसे भी शुमार मौके आते हैं तो वहां दिल ये होता अल्लाह जगह मिल जाए फिर जगह मिल गई इत्मीनान की जगह मिल जाए मतलब ये है हर चीज में हमें तो हम तो हाजतों के मुतले हैं हमारी गया हाजतें हर वक्त हैं अपनी हाजतों के मुताबिक दिल ही दिल में अल्लाह ताला से सवाल भी करें और सवाल के अल्लाह की तरफ से उनके पूरे किए जाने पर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र भी अदा करें दोनों चीजें होनी चाहिए तो ये दुआ जो करेंगे इस दुआ की वजह से अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक कायम होगा और शुक्र जब अदा किया जाएगा इस शुक्र की वजह से भी और शुक्र का बड़ा फायदा दूसरा ये भी होगा कि कोई ऐसी नेमत है जिसमें कुछ हमारी इसको भी दखल है तो उसकी वजह से जरूर नहीं पैदा होगा शुक्र की वजह से कि भाई आपने तो बयान कर दिया अच्छा बयान हुआ बस ये दूसरे के बाद तो बड़ा शानदार ये नहीं कि भाई अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि कुछ ना बनेगा की जबान से जो बातें सुने कहलवा दी जिससे मुझे भी फायदा पहुंचा उनको भी अल्लाह के बंदों को ये शुक्र हो और कोई ऐसी मुसीबत की चीज है तो सबर का एहतमाम हो दोबारा वैसे तो शुक्र सबर पर गालिब आना चाहिए इसलिए कि हर वक्त مسائل کے مقابلے میں نعمتیں ہمارے حال پر زیادہ ہیں, ہے نا؟ اتنی کسی وقت بے شمار نہیں, ہمارا پورا جسم, آنکھیں, کان, زبان, ہاتھ, دل, دماغ, یہ سب برابر کام کر رہے ہیں, ہوا دے, سانس دے رہے ہیں, پنکھا چل رہا ہے, آرام سے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر, اللہ کی عبادت سے مشغول ہیں, کتنی کتنی نعمتیں. کوئی اگر کوئی تکلیف ہے خدا نہ خاصہ سر میں درد ہے تو ایک ایک مصیبت سر میں درد, باقی باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن دلی سے اللہ کے بندے کو پوچھیں گے کیا حال ہے, بہت اچھا ہے, اتنی بے شمار نعمتیں تھی آئیں اور بھی یہی پسند ہو, بس ایک سر درد سر ہے اس کو لے کے بیٹھا. یہ جو ہے نا یہ شکر والا انداز ہمارے حضرت مولانا حضرت حضرت میاں صاحب سید مانا حضرت مانا سید اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں ہیں اور رانجے میں ان کا مزار ہے, دیوبند ہی کے رہنے والے, اکثر ہمارے اہل مدارس کی داؤد شریف کی صنعت انہیں کے واسطے سے حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس پہنچتی ہے. تو ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بخار تھا, میں پہنچا اور میں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے, الحمد للہ آنکھیں برابر کام کر رہی ہیں, دیکھ رہا ہوں, کان کام کر رہے ہیں, سن رہا ہوں, زبان کام کر رہی ہے, بول رہی ہے, سب دیر تک نکلا, بس تھوڑا سا بخار ہے, بس تھوڑا سا بخار ہے. ایک انداز یہ بھی ایک گلاس ہو نا, گلاس کے اندر آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے, تو دیکھنے کے جو انداز ہے جو مثبت پہلو والا ہوگا نا وہ ایک الحمد للہ آدھا گلاس پانی موجود ہے, اور جو منفی پہلو والا ہوگا آدھا خالی, ارے بھائی جو آدھا ہے اس کا تو مان لو نا, اس کا شکر ادا کرو کہ آدھا خالی کی شکایت میں پڑے ہو. تو کہنے کا حاصل یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سر یہ ایک تو دعائے اذکار مسنونہ تو ہوئے, اس کے علاوہ بھی اپنی جو جو حاجتیں دل و دماغ میں آتی ہیں, پیش آتی رہتی ہیں, ان سے ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگنے کا ایک مزاج بنا لیا جائے, کہ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنتی, یہ بھی ذکر اللہ ہی کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ جو کلمات ذکر اللہ کے حدیث میں آئے, جیسے کتاب یہ فضائل ذکر میں میں نے کل بتایا تھا, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ, یہ تسبیحات ان کے بھی ایک مقدار ہونی چاہیے, اور اس کو باقاعدہ طے کر لے آدمی کہ وہ کتنی مقدار ہے, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, پہلے آپ نے شیخ سے اور جن سے بیٹھ کا تعلق ہے مشورہ کر کے یا ان کی طرف سے بتایا گیا ہے, اس بتائے ہوئے کو پورے اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ وقت مقرر وقت میں مقررہ جگہ میں, یہ بات یاد رہے, وقت بھی مقرر ہو اور جگہ بھی مقرر ہو, وقت اور جگہ آپ مقرر کر دیں گے تو اس میں برکت بھی ہے, نور بھی ہے. آدمی جب مقرر وقت میں ایک عمل کرتا ہے تو اس کے اس عمل کئی روز تک اس مقرر وقت میں اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس وقت میں بھی نور پیدا فرما دیتے ہیں. مقررہ جگہ میں جب کوئی عمل کرتا ہے تو کئی روز تک آپ اپنے گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو اس مقررہ جگہ میں چند روز تک جب آپ تسبیح کا اہتمام کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جگہ کے اندر بھی ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں. تو اب جب اپنے مقررہ وقت میں مقررہ جگہ میں آپ جب اپنا عمل شروع کریں گے تو ایک تو آپ پڑھ رہے ہیں وہ, اور اب تک کے آپ کے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں اور اس مکان میں جو نور پیدا فرمایا وہ بھی آپ کے حق میں کیا ہوگا, نورین ثابت ہوگا. یہ جو مخلوقات ان کے ساتھ ان کے یہ ہمارا وقت ہماری جگہ بھی ذکر میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اس کی وجہ سے ایک قسم کی تقویت پیدا ہوتی ہے, ایک چراغ روشن ہے, دوسرا کریں گے, تیسرا کریں گے, چوتھا کریں گے تو روشن تو ہے جو ہے ظلمت دور, لیکن وشیش وجہ سے نور میں قوت اور کفا کریں گے تو اور زیادہ روشنی میں قوت اور تیزی پیدا ہوگی. تو بہرحال یہ وقت بھی متعین ہو جگہ بھی, یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. یہ تصویحات مقررہ اوقات یہ جو مستور ہے اور اسی میں کہ قرآن پاک کی تلاوت اس سے پاک گرو شریف یہ سب اسی کا اجزاء ہے اور ان کی بھی جو بھی مقدار طے کریں اس کی پابندی ہونی چاہیے. خیر عمل مادیما علیہ, بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر پابندی اور مداومت کی جائے. آپ 100 مرتبہ اس طرح کرنا پڑتے ہیں, 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار. ہمارے اکابر کے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ویسے وہ حضرات تو 300 300 کو پسند فرماتے تھے, پہلے وہی تھا, اب 100 کا کہا جاتا ہے اور وہ 100 بھی ہمارے اہل ایمان کو بھاری معلوم ہوتے ہیں, وہ بھی پورے نہیں ہوتے, مشغول ہی ہے. میں ابھی بتلاؤں گا اپنے اکابر کے معاملات کو تو کتنا اہتمام کرتی کثرت ہوا کرتی تھی. تو بہرحال میں ایسا کر رہا ہوں کہ اس کی بھی مقدار جو ہے اس کو پابندی سے ادا کیا جائے. جب تک کہ پابندی سے ادا نہیں کریں گے اس کا کوئی اثر ظاہر. ایک پانی کا قطرہ ہے, ایک قطرہ گرتا ہے لیکن مسلسل گرتے دوسرا, جب چٹان کے اوپر گرے گا تو ابھی اس کے اندر کیا کر دے گا, سوراخ کر دے گا. اور کوئی نل آپ نے پل کھول دیا اور اس کی وجہ سے پانی ایک دم سے پوری ٹنکی خالی ہو گئی, کچھ بھی اس سے ہونے والا. تو بہرحال یہ جو یہ اذکار اور یہ ان کو ایک تو جو بھی مقدار طے کی گئی ہو اس مقدار کو پابندی سے, اس میں جو ہے کبھی ناغا نہیں ہو. ہمارا نفس ہم کو بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. کیا دھوکہ دیتا ہے؟ تم روزانہ پڑھتے ہو, اگر ایک دن نہیں پڑھو گے تو اس سے کیا تمہارا نقصان ہو جائے گا؟ یہ عام طور پر ذہن میں یہ خیال آتا ہے. تو میں اس پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو, آج جب سے پیدا ہوا ماں کا دودھ پینا شروع کیا اور دودھ چھوٹا اور غذا آئی, تو آپ کی جو عمر ہوئی ہے, آپ 20 سال کے, 25 سال کے, 30 40 50 سال کے, روز جب سے پیدا ہوئے کھانے کا ایک سلسلہ جاری ہے. صبح چائے پیتے ہیں, دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں, شام کا کھانا کھاتے ہیں. میں آپ سے کہوں کہ آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی, 40 سال سے آپ پابندی سے دو ٹائم کھا رہے ہیں, ذرا دو دن مت کھاؤ گے کیا ہوگا؟ دو دن مت کھاؤ, 40 سال سے کھا رہے اور دو دن نہیں دو وقت مت کھاؤ گے تو نام صاحب یہ تو نہیں کرتا. ڈیلے ہو جائے گی, چلا نہیں جائے گا, ہے نا, دماغ کام نہیں کرے گا. یہ تو سمجھ میں آتا ہے 40 سال سے غذا کا اہتمام کرنے والا دو ٹائم نہ کھاوے تو اس سے کیا نقصان ہے, وہ اس کی سمجھ میں آتا ہے نا. ابھی کہ آدمی کیسے ابھی تو بیچ ہوئے نہیں, ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ذکر شروع کرنے اور تصویات کو شروع کرنے کے اندر, اور نفس ہمارا کیا کہتا ہے, ایک دن نہیں پڑیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ کیونکہ ہمیں اس کے فائدے کا بھی احساس ہوا نہیں, اس لیے نقصان کا بھی احساس نہیں ہوگا. میں یہ چیزیں مثال دے کر مدلل اس لیے بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھیں اور اس کی اہمیت معلوم ہو. تو کچھ بھی ہو ہمیں ہر حال میں اس کا اہتمام کرنا ہے. دنیا عزت سے ادھر ہو جائے لیکن اپنے اس معمول کو کیا کرنا ہے, پابندی کرنی, کوئی فائدہ ہو. میں مثال دیا کرتا ہوں, چائے تو بھائی چائے کیا آپ پابند ہیں یا نہیں؟ چائے کی پیش یاد ہے. اب اگر جیسے بارش کا سیزن چل رہا ہے, کسی روز رات بھر بارش ہوئی اور پورا مکان ٹپک رہا ہے, کہیں جو ہے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. صبح ہوگی تو آپ بیوی سے کہیں گے, اے چائے میں ذرا اوپر اور ٹیبل پر رکھ کر بھی چائے بنا, بعد میں سب کچھ دیکھا جائے. چائے کے بغیر کچھ سمجھ پڑتی ہے؟ یا رات بھر بیوی بیمار رہی, پیٹ میں سر میں درد رہا, بے چین رہے, بے اپنی توفیق کا اسپتال بن گئے, چلو صبح ہوتی ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے گئے, لے کے گئے, اس کا اس کی جو خدمت آپ کے ذمہ پوری, لیکن جہاں ادھر ادھر لے کر کے گئے وہی ساتھ میں آپ ادھر ادھر تلاش کریں گے کہ ڈاکٹر کی کلینک کے پاس کہیں کوئی لاری واری چائے کی ہے تو اپنی چائے کی ضرورت پوری کر, राय तो छूटने वाली, वहां कभी एक ख्याल नहीं आया कि हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ आज, तस्वीर उनका क्या कर रहा आज, बल्कि तो बेचारी तो बड़ा पेट में दर्द रहा, सुबह डॉक्टर के पास लेके गया, उस दरमियान में तस्वीर छूट गई, उन्हें चाहे चाहे तस्वीर वहां एक लारी से कही, हालांकि तस्वीर पढ़ते तो हो सकता था उसकी बरकत से बहाने बताते किसी चीज की कोई हिम्मत बताई जाए तो हिम्मत और मालूम में जोर तो होना चाहिए ना है, आप पहले ही मैं जानते हैं तो हिम्मत तो बताते हैं मुसीबत को, अरे भाई मुसीबत का तकाजा तो ये था कि आप अल्लाह ताला की तरफ और ज्यादा मुतवज्जो होते, फिर जाए कि रोजाना जो तवज्जो हो रही है उसको भी आपने छोड़ दी, क्यों कोई दलील हुई, क्यों कोई बहाना हुआ, हम जो बहाना पेश कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, लफ्ज़ हमें ऐसा धोखा देता है। तो महाराज मैं ऐसा कर रहा था कि पाबंदी जैसे ही थी, चाय की पाबंदी, खाने की पाबंदी है ना, नहीं करते दोपहर का खाना, बंबई जाना है गुजरात एक्सप्रेस में बैठे या जबानी बैठने की, खड़े खड़े बरूद से सवार हुए, बड़ौदा से सवार हुए, खड़े खड़े, अब जो एक बजे वो गाड़ी बंसाल स्टेशन पर पहुंची, तो जरा खड़ा चढ़ने की जगह नहीं, जरा कुछ पकौड़ी को फिर मिल जाओ, और जो है हम पांव और बड़े खाके तुम्हारा यानी खाने का वक्त आया तो खाना सुहाने नहीं सोचा, ऐसी भीड़ है अभी तो बैठने की जगह नहीं, नफ्स जब तकाजा करे तो उसका हमें जवाब देते, अरे बैठ तो अभी अभी खाना नहीं खाई, अभी तो बैठने का तो ठिकाना नहीं, इतने आने की जगह तो मिली नहीं है, मैं तू खाना मांग रहा अभी नहीं खाई, कभी ऐसा जवाब दिया नफ्स तो नहीं, लेकिन आपको देकर समझाना चाहता हूँ कि देखो हम कितने बिगड़े हुए, हम कितने बिगड़े हुए, जैसे उन चीजों हमारे सभी तकाजों को पूरा करने का हम खूब क्या करते हैं, किसी के यहाँ खुदा खास कर खानदान में कोई हादसा पेश आ गया, एक्सीडेंट हो गया, एक दो मौतें हो गई, अब जो है उसमें मशहूली आ गए, सब शिरकत की सब अस्पताल ले गए, इंतकाल हुआ सब धन आ जाता सब, और वहां पूछेंगे भाई आज तिलावत क्या करें, सर ऐसा हो तिलावत तो खुल गई, अच्छा तिलावत खुल गई दुबर का खा लिया, दुबर का खाना तो वो नहीं छूटा, वो तो कहीं ना कहीं हाथ मार ही लिया, तो मौका देखते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम अपने सभी तकाजों को जो है ऐसा पाबंदी से किसी तरह ये रूहानी तकाजे जैसे उसको छोड़ने के नतीजे में जिस्मानी कमजोरी और नुकसान महसूस करते हैं, इसको छोड़ने की वजह से रूहानी कमजोरी और नुकसान होगा, इसका हमें एहसास होना चाहिए, समझे, तिलावत का जो मामूल है कभी छूटने न पाए, बात कहते सफर सफर में तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, सफर जब ये होता है ट्रेन में और बस में बैठता हूँ मजा आ जाता है, तो बहुत सी वो तस्वीर जो और दिनों में हम पढ़ सकते हैं, और रोजाना तो हम तीसरा करना भी इस्तीफा उसका इस्तेमाल बाकी रोजाना के काम उसमें ऐसी फुसल लगे हुए हैं, लगा बंदा वक्त है, लेकिन अब जो सफर में है तो सबक तो है, हाँ तो सबक की तैयारी की घर घर से, सफर में खाली है तो रोजाना तो मौका मिलता नहीं, आज मिल गया तो कलमे की तस्वीर पढ़ लो, रोजाना मौका मिलता नहीं आज मिल गया, और बहुत सारी और भी तस्वीर आप जमा कर सकते, मैं कहना नहीं चाहता कुरान की तिलावत रोजाना दो तीन पारे करते थे, आज अल्लाह ने मौका दिया है दो तीन घंटे मिले हैं तो आठ दस पारे कर डालो, ताकि बीच में कुछ कमी वमी हुई थी उसकी भी क्या हो जाए तलाब की हो जाए, मिजाज ये बनना चाहिए, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिक्र के एहतमाम और पाबंदी में ये चीज अहम है कि जो तस्बीहात वगैरह मसनून तस्बीहात एक भीतर वो विशेष गहरी जो आभार लेते हैं, बात याद रखते हैं। पहले नहीं, मैं शुरू में बता चुका हूं कि जितने जहरी जो है वो एक बतौर इलाज के है, वो है अल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे मशाइखों के इलाज के लिए भी जो चीज तजवीज की वो भी दूसरी चीज नहीं, बल्कि जैसे कोई बीमार हो जाए उसका इलाज गिजा की शक्ल में तजवीज किया जाए, तो गोया हम खुरमा हुआ हम सवाब जैसा मसला हो जाएगा, तो गिजा भी है और इलाज भी हो रहा है। ऐसे हमारे मशाइख ने हमारी ये जो इलाज तजवीज किया ये जिक्र, तो वो जिक्र भी है और लेकिन वो इसे कुछ चीजें उसमें बढ़ा दी गई है। पाल लोग उसका इश्कार करते हैं कि ये जड़ लगाना ये कहाँ था भी, अरे भाई हम कहाँ कहते हैं कि ये सन्नति में जड़ लगाना ला इलाहा इल्लल्लाह सुन्नत अफ़ज़ल ज़िक्र राय, लेकिन ये तो एक खास मखसूस जो है जरूरत की वजह से, जैसे एक बच्चा कुरान हिफ्ज़ करता है अब उतरे पर बच्चा बिस्मिल्लाह कुल अल्लाह कुल अल्लाह कुल अल्लाह कुल अल्लाह कुल अल्लाह, अब कोई आके पकड़े उसका गला एक करता है कुरान की तिलावत करना चाहिए, अरे भाई वो तो इसलिए पढ़ता है ताकि उसके दिल में ये कुल अल्लाह व अहद वाली आयत क्या हो जाए, कम जाए है पुख्ता करना, ये पुख्ता करने के चलते और इस तरह बहुत से अंदर निकले आते हैं, तो ये तो उसमें उसमें खुद इस तरह पढ़ने में ही बात खुद अपना वो चीज तो अपनी जगह पर जिक्र है, लेकिन ये तरीका उस तरीके को हम इबादत करार नहीं देते, उसको जरूरत करार देते। तो बहरा मैं अभी बात ये करना चाहता था कि ये जो जिक्र जहरी हमारे अहबाब लेते हैं, पहली बात तो हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह, मुझे भी याद में जब पहली में कहा जिक्र लिया हजरत हजरत हमेशा करें जिक्र ताकि भाई देखो तुम अगर उसकी पाबंदी कर सकते हो तो उसको शुरू करो, अगर तुम पाबंदी नहीं कर सकते हो तो अभी मत करो, जब तुम्हारे ये ख्याल हो कि मैं उसकी पाबंदी करूंगा तो शुरू करने के बाद छोड़ना ये मुजिर है। पुराना तरीके इलाज जो था तिब्बे यूनानी का, अब वो तो तिब्बे यूनानी भी बेचारी खत्म होती जा रही है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ तरीके से इलाज के उसमें ये होता था कि पहले जो है जब बीमार आता था तो उसका जो मादा अंदर से बीमारी का उसको पका कर फिर उसको बड़ा मुनज़्ज़ात दिए जाते थे, फिर मुश्किलात दिए जाते थे, उसके बाद फिर मुकव्वियात का दर्जा आता था। तो वो तरीके तफसीलें तो रही नहीं, अभी जो डॉक्टर इलाज आया उसको तो खत्म हो गया। तो बाहर अगर फरमाते हैं कि ये तो मुश्किल की तरह है और एक इलाज कोई भी इलाज दरमियान में जैसे आज डॉक्टर इलाज में तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन एक एक इलाज ऐसा डॉक्टर ही भी है तो कोई किसी का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं तो जो पागलपन का इलाज जो किया जाता है डॉक्टरों से वहाँ डॉक्टर ताकि फरमाते हैं एक टाइम का भी नागा होना नहीं चाहिए, जो पाबंदी है उससे एक दिन भी छोड़ोगे तो ये दवा सब क्या हो जाएगी बेकार हो जाएगी। तुम्हारा कहने का हासिल यह है कि जिक्र जहरी शुरू करने के बाद छोड़ा नहीं जाएगा, मुझे है छोड़ना। दूसरा यह है कि जिक्र जो है हमारे तरीके चिश्तिया नक्शबंदी तरीका है, तो नक्शबंदी तरीके में लताई के सिक्का उन लताई के सिक्का को ये करने का ये हमारे चिश्तिया तरीके के अंदर सिर्फ लतीफे कल्ब, तो इसलिए तमाम लताइफ का सरदार कौन है अला इन्ना की जैसा जिस रतन इजा दस सलवा सलाल जसद कुल हूँ वैदा फसद फसद जसद कुल अला वैयल कर कल्ब को बुनियादी हैसियत करा दी। तो हमारे मशायख के इश्तिया के यहाँ कल्ब ही पर ये जो जिक्र जहरी होता है उसका सारा जो जर्दे में लगवाई जाती है कल्ब ही के ऊपर, अगर ये ठीक हो गया बाकी जो है लताइफ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं। और इसी को इसी जिक्र जहरी को हमारे बुजुर्ग झाड़ू कहते हैं झाड़ू, तो ये सारा दिल का झाड़ू झंकार क्या कर देता है, अगर कोई आदमी इखलास के साथ और पूरी तवज्जो और पाबंदी से उसका इस्तेमाल करेगा तो एक मुद्दत के बाद उसके बड़े बरकात और अनवार जाहिर होंगे। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मनसूजात को देख लो, हजरत जगह जगह इसकी बड़ी ताकीद फरमाते हैं कि कोई कुछ भी कहे इसको छोड़िए। अगर मदनी अम्पिलाल का जब शुरू तय कर रहे थे इस तरीके से हुआ, उन्होंने फिर अगर गंगोई अम्पिलाल से दरखास्त की तब जो है नक्शबंदी तरीका जैसे बगर की कोई जरूरत नहीं। तो बारह ये आजकल जो है ना बालक ये हमारे पीर भूषकाल साहब दामद बरकात उनकी आने और उनकी बरकतों की वजह से नक्शबंदी सिलसिले की भी चीजें लोगों के सामने आती है। हमारा मकसद है हमारे आबाद हबाबी तरीका क्या है, तो हर आदमी क्या चाहता है मैं आज के आज ही वक्त आसमान पर पहुंच जाऊँ। किसी को करना कुछ नहीं है, वहां किसी उस सिलसिले के करते हुए को देखा कभी क्या करता है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसने बताया वो करता है या दूसरा है अल्लाह बेहतर जानता है। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आपको अपने तरीक पर यकीन होना चाहिए और अपने शेख के बताए हुए तदबीर के मुताबिक अमल करेंगे, अल्लाह आप इस यकीन के साथ बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको वसूल अता फरमा देंगे। हमको तो कभी ख्याल भी भूले से नहीं आया, अपने सिलसिले के बुजुर्ग हजरत मुस्लिम साहब के साथ होते थे और हजरत शेख के यहाँ आते थे, किसी बड़े से बड़े के आने पर कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि इनसे भी हमें इन्हीं फायदे तो हासिल करते थे लेकिन इनसे भी कुछ मिल जाए ऐसा कभी दिल में सोचा ही नहीं। जो अपने शेख के साथ ताल्लुक और ये सिलसिले में यही चीज है। तुम्हारा मैं असल तो बात कर रहा था जिक्र जहरी की, ये जिक्र दवाजा तस्वीर है बड़ा अहम है हमारे अकाबी के यहाँ, उसको बड़ी अहमियत हजरत शेख इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह उसको बड़ी अहमियत बतलाते हैं, हजरत शेख ने बतलाया और हजरत रायपुरी के यहाँ, और इसीलिए ये अकाबी जो है अपने आखिरी मकाम तक और उससे भी आगे पहुंचने के बाद भी इसको छोड़ के, आपने सुना होगा काबिर के अनुदान में और आप भी थी और इसमें हजरत शेख ने हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जो है लिखा है कि जिंदगी आखिर तक मौत तक वो बराबर जिक्र जहरी की पाबंदी की, रमजान के अलावा दिनों में आप तहज्जुद के बाद जो है फजर के अजान से पहले अपना जिक्र करते थे और रमजान में असर के बाद तो मगरिब से 5 मिनट पहले जिक्र पूरा होता था। हालांकि आप हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो मकाम था रुहान बहुत, लेकिन उन्होंने जो छोड़ा नहीं, हजरत आयतुनी की यहाँ भी बड़ी पाबंदी रही, हजरत गंगोही के मुताबिक है कि जोर के बाद दरवाजा बंद हो जाता था कमरे का असर तक, तो लोगों ने देखा कान लगाकर जिक्र भी कर रहे तिलाव वगैरह। तो महाराज ये जिक्र जहरी जो है उसमें नागा पाबंदी से करो। मैंने हजरत मां सिद्दीक अहमद साहब रहमतुल्लाह के साथ सफर के मौके मिले, पाबंदी से देखा हजरत को तहज्जुद के बाद पाबंदी से जिक्र जहरी करते थे, कभी छोड़ा नहीं। मैंने जब मैं जिन सफरों में रहा और हजरत के साथ मौका मिला तो बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसकी पाबंदी होनी चाहिए। जिक्र जहरी ये भी ना ये दूसरे अस्कार के अंदर जैसे एक आदमी का मैदा खराब हो तो वो बिरयानी ज्यादा खाएगा तो बिरयानी ज्यादा से उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, मैदे का इलाज करो तो इसी तरह ये दूसरे अस्कार वगैरह से हमें जो फायदा पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचता वो दिल की खराबी की वजह से, तो दिल के इसी खराबी के इलाज के लिए जिक्र दोबारा खास करके जो अहले इल्म का तबका है या दीन में मेहनत करने वाले चाहे वो मदारिस के लोग या दावत तबलीग से ताल्लुक रखने वाले सबके लिए इसका बड़ा इस्तेमाल हो। जो जितना ज्यादा इससे इस्तेमाल करेगा उतना अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके कामों में खैर और बरकत मुकद्दर फरमाएंगे। दोबारा ये जिक्र जहरी जो है वो जैसा कि बतलाया है तो इलाज के तौर पर, लेकिन फिर जब वो करते करते आदमी मकाम पर पहुंचता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। हमारे बुजुर्गों के से जुमला मनकुल है कि जिसकी बरकत से अल्लाह ने यहाँ पहुंचाया उसको काय को छोड़ा, हम तो जिंदगी भर उसको पकड़े रहेंगे। तो बाहर जी और कुरान पाक की तिलावत का इस्तेमाल, तो अभी जो उसके अलावा भी ला इलाहा इल्लल्लाह का वीर्द अल्लाह 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 का नाम ये 1.25 लाख हजरत हजरत शेख रहमतुल्लाह ने फजाइल जिक्र में लिखा है, हजरत शाह वलीला साहब दहलवी रहमतुल्लाह के वालिद शाह अब्दुल हलीम साहब दहलवी का जुमला कि इब्तिदाए सुलूक में मैं एक सांस में 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, एक सांस 200 मरतबा हजरत शाह अब्दुल हलीम साहब दहलवी हजरत शाह वलीला साहब के वालिद। हमारे हजरत से मैंने सुना हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा, फरमाया बुढ़ापा आ गया सांस नहीं रहा सांस कम हो गया फिर भी एक सांस में 180 दर्जे लगाता हजरत हाजी साहब की। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह के मुताबिक किसी ने हजरत से पूछा क्या क्या पढ़ने का जमाना तो गया, आजाद मुतमईन हो गए, ताकत नहीं रही बदन में, उसके बावजूद 1,25,000 का मामूल है। 1,25,000 वो खाली 1,25,000 लेके बैठे नहीं थे, बल्कि हजरत यहाँ सिया शिक्षा का दर्श होता था, आने वाले जो है सालिकीन की तरबियत होती थी, मेहमानों की मेजबानी हुआ करती थी, आने वाले सवाल खतूत के जवाब दिए जाते थे, आने वाले सवाल फतावा के जवाब, पूरा एक निजाम। और हमको दो किताबें पढ़ाने को मिली है, वो ऐसी मुसीबत उन पर बन गई है कि और कुछ होता नहीं, कहते हैं क्या करें, बड़े मुताले करना है पढ़ाना है। हमारे जितने भी मौलवी यही बहा करें, जो आगे हमको लाल सबक नहीं पढ़ाना, उनके ये सिलसिले नहीं। हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अभी माना जाए, साहब ने सुनाया कि वहाँ बांग्लादेश के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो कानपुर के जमाने के हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। उनसे कहा कि हजरत के वाक्या सुना, क्या सुनाए, वाक्या तो बहुत है, एक सुनाता हूँ कि हजरत सबक के अंदर कुरान पाक की तिलावत की बड़ी ताकीद करते थे, कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो। तो कहा मैं छोटा था, हजरत करीब था, एक मतलब आप पूछ लिया कि हजरत आप कितना कुरान पढ़ते हैं, तो हजरत जवाब में फरमाया भाई देखो ये तो बंदा और अल्लाह के दरमियान की चीज़ है, किसी का भेद खोलना नहीं चाहिए। तो क्या मैंने इफ्तार किया कि बतला दें कि हमें भी बेरत हो, क्या तहज्जुद में 8 पारे पढ़ता हूँ और दिन भर बेहिसाब कुरान पढ़ता हूँ। हालांकि हजरत की सवाल देख लीजिए आप, हजरत मुफ्ती साहब की कानपुर के जमाने में दौरे की अक्सर किताबें हजरत पढ़ाते थे, उसके अलावा फतावा का जवाब देते थे, और वहाँ कानपुर और तराज के अंदर दावत और तबलीग का जो काम होता था उसमें बराबर हिस्सा लेते थे। आने वाले मेहमान कितने काम थे हजरत, इन सारे कामों के साथ इसका एहतमाम। इसी तरह माने जाए का एक और बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक हजरत जब उनसे पूछा कि कितना कुरान पढ़ो, उन्होंने जवाब में कहा 10 पारे। उनका बस जवान आदमी हो, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, 40 पारे पढ़ता हूँ। तो ये कुरान पाक की तिलावत, ये हमारे मैं अभी 3-4 साल पहले जाम्बिया के सफर में हजरत माना अब्दुल मोताला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के लाजमे से हजरत के प्लेटफॉर्म से हैं, मैंने पूछा हजरत शेख का रोजाना का जो है तिलावत का मामूल क्या था। गाँव में रोजाना हजरत जो है 9-10 8-9 पारे तिलावत कर लिया करते थे नफलों में। हालांकि हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी मुशाविर जो हदीस पढ़ाने वाले हैं हजरत जानते थे, हजरत का ज्यादा वक्त तो उसी हो गए। हमारे अकाबी के यहाँ कुरान पाक की तिलावत का यह अहतमाम, अल्लाह के नाम का यह अहतमाम। हजरत दुंगे के 1,25,000 का सुना, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब उस्मानी जिदालुन देवबंद के मौसम में थे, ऐसे तो नाइन मौसम थे लेकिन मौसम भी कहलाते थे। हजरत हाफिज अहमद साहब जो हजरत नाम की रमतुल्लाह के साथ जादे हैं, वो असल मौसम ही थे, लेकिन सारा इंतजाम और अल्लाह ताला ने इंतजामी सलाहियत ऐसी अता फरमाई थी। हजरत मुफ्ती शफी साहब रमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो मुल्क के वजीर आजम बनने के काबिल थे, ऐसी इल्मी सलाह अल्लाह ताला ने इंतजामी दारुल देवबंद के जो इंतजामी उमूर को तरतीब दिया है उसके अच्छा को उन्होंने दोबारा वो उनके मुताबिक हजरत मुफ्ती शफी साहब रमतुल्लाह फरमाते हैं तो उनका 1,25,000 का मामूल था रोजाना का 1,25,000। अब हालांकि एहतमाम एहतमाम ये तो हम मन से माफूल है, ज़्यादा हम और हजन ही में रहता है मौसम जो है, और ये आजकल एहतमाम के साथ कोई इल्मी काम तस्तालीब और तस्नीफ का काम या ये, लेकिन वो 1,25,000 का मामूल। मैंने खुद हमारे मुख्यमंत्री से सुना के दारुल देवबंद में कोई अहम बात की शादी थी तो तुम कहते गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जो है सरपरस्त थे, उनके पास जब जाना होता था तो ये दोनों हजरात इमाम हाफिज अहमद साहब हजरत मान के साथ जाते हैं वो और हजरत मान हाफिज रहमान साहब दोनों देवबंद गंगो हाजिरी देते थे, वहां जाकर 3 रोज एहतिकाफ करते थे। उसके बाद जो जिस काम को लेकर के जाते थे वो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करते थे कि ये जरूरत इसके लिए हमारे, और वहाँ हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वहाँ हबीब रहमान साहब का क़याम था, चाहे रात को तहज्जुद के वक्त चाय बनाकर हजरत की खिदमत में पेश करते थे। हजरत ने एक मौके पर अल्लाह वालों की हिज भी बड़ी तेज होती है, इस जिम्न में ये फरमाया कि एक मरतबा हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में तशरीफ लाए, फरमाया कि मियाँ सलाई जलाई वो ऐसी बुआ थी, तो हाथ ईशा की नमाज देर से होती थी, उस वक्त तशरीफ लाए थे, किसी ने मगरिब के बाद मियाँ सलाई जलाई थी, उसकी वो हिस तेज होने पर, तो वहाँ काजम हबीबुर रहमान साहब साहिब इलाते थे, कहा कब्र काबी को धो करके कपड़े से अच्छी तरह जो है पूछा और उसके बाद चाय पेश की। हजरत फरमाते कच्चे पानी की बुआ थी, पर दूसरे ने इसलिए किया कि उसको जो है धो करके कपड़े से साफ करके आग के ऊपर मुंह तपाया और फिर चाय पेश की, तो कहा आज कच्चे पानी की बू नहीं है। हजरत कितनी हिस्से थी। खैर मैं जो बात बताना चाहता था वो ये है, एक दिन हजरत गंगू रहमतुल्लाह ने फरमाया, हाँ बड़े हबीबुर रहमान सभी लोग दुआ के लिए कुछ ना कुछ बात कहते रहते हैं, इसकी आपने आज तक कभी कुछ कहा नहीं। ये जब पैर पेश कर रहे थे रात, तो उन्होंने कहा हजरत ये इस खिदमत का मौका जन्नत में भी मिल जाए, ये दुआ का इंशाल्लाह जरूर। तो मैं दोबारा मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि हजरात अपनी मशहूरियतों के बावजूद क्या जिक्र की इतनी बड़ी तादाद, तिलावत की ये तादाद, आज हमारा हाल यह कि दो किताबें हमें पढ़ानी है, चार किताबें हमें पढ़ानी है, तो अब हमारे अहले इल्म से कहते हैं क्या करें, पर क्या पढ़ें, मुताले की वजह से वक्त नहीं मिलता, आज अखबार देखने का वक्त मिलता है, दोस्तों को फोन करने का वक्त मिलता है, और आजकल जो है फोन के साथ जो है चैटिंग करने का वक्त मिलता है, दोस्तों की मजलिसों में गपशप करने का वक्त मिलता है, हर चीज का वक्त मिलता है, नहीं मिलता तो अल्लाह के जिक्र के लिए। अभी बात इंशाल्लाह कर इसको पूरा कर लिया, तो आनंद आएगा।
तमाम साथी अपने अपने हलकों में बैठ जाएं, नए आने वाले हजरात यहाँ मंदिर के करीब आ जाएं।